Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tav Tattvam Na Janami कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः योऽसौ सो अहं यजामि ॐ शान्ति मुंडक उपनिषद में शौनक ऋषि द्वारा प्रश्न किए जाने पर कि वो क्या है जिस एक को जान लेने के बाद फिर कुछ और जानने के लिए बाकी नहीं बचता, अंगिरस उसका जवाब देते हैं यत्तत् अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम अवरणम अचक्षुश्रोत्रम तत्पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तत् अव्ययम् यत् भूतयोनिम् परिपश्यन्ति धीरा। पहले उन्होंने जानने के लिए दो विद्याओं का उल्लेख किया, अपरा और परा। अपरा की व्याख्या में उन्होंने वेद, उपवेद, वेदांग, उपांग, शास्त्र, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि आदि का उल्लेख किया और परा के लिए केवल एक शब्द अक्षर अक्षरम अधिगम्य थे, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। अब वो जो एक शब्द उन्होंने कहा अक्षर, अब उस अक्षर में अनेक अक्षर छुपे हुए, उसकी व्याख्या में हम जितने मर्जी शब्दों का प्रयोग करें वो पूरा नहीं होगा। उसकी व्याख्या क्यों पूरी नहीं होगी? क्योंकि व्याख्याएं उनकी पूरी होती हैं जो क्षार हों, खत्म हो जाने वाले। व्याख्या करते करते एक दिन आएगा हम कहें कि यह खत्म हो गया, वो खत्म हुआ, उसके साथ उसकी व्याख्या भी खत्म। खत्म होने वाले के लिए कितना भी हम कर लें लेकिन फिर भी उसको शब्दों में बांध ही लें। इतिहास में जितने बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो सिकंदर हुआ हो या अशोक महान हुए हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो या नेपोलियन, जिन्होंने भी इतिहास में कुछ नाम पैदा किया और जिन्होंने भी साहित्य में कुछ नाम पैदा, साहित्यकार हों, कलाकार हों, भौतिक उपलब्धियों वाले हों, उनका पूरा वर्णन कर सकने में इतिहासकार सक्षम हुए। क्यों उनका पूरा वर्णन उपलब्ध है? क्योंकि वो क्षर थे, एक दिन वो खत्म हुए, वो खत्म हुए तो उनका वर्णन भी खत्म हुआ। अब जो अक्षर है, अक्षर का अर्थ ही ये है जिसका क्षय नहीं। अब जिसका क्षय नहीं, जिसने कभी खत्म नहीं होना, उसका वर्णन भी कभी खत्म नहीं होगा। वो शब्दों में बांधकर समझाया नहीं जा सकेगा। हम जो समझ सकते हैं वह बुद्धि की सीमा में आ जाना चाहिए। हम केवल उसे समझ सकते हैं जिसका हमने शुरू देखा हो, जिसको बनते हुए देखा हो, फिर अंत होते हुए देखा, या उसके संबंध में हमारी जानकारी हो कि इस तारीख को इतने सन में इतने बजे ये व्यक्ति पैदा हुआ और इस डेट को इस टाइम पे इतने बजे इसकी डेथ हो गई। इसके बीच में जो कुछ भी रहा, हम उसके बचपन से लेके उसकी कहानी को, उसकी बातों को आखिर तक समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जिसका कोई उत्पत्ति नहीं, जो पैदा नहीं हुआ और जिसका अंत नहीं, इसका अर्थ होता है कि जब भी उसकी बात हम शुरू करेंगे, जब भी उसकी चर्चा शुरू करेंगे, तो ना तो उसके आदि की चर्चा है वो, ना उसके अंत की। जब आदि और अंत की चर्चा नहीं तो फिर मध्य की चर्चा है, बीच की चर्चा है, ऐसा हम कह सकते हैं। या तो किसी के आदि से शुरू करके कि ये पैदा हुआ, फिर उसका बचपन, फिर उसकी पढ़ाई, ऐसे करके जैसे इतिहास के व्यक्तियों की हम चर्चा करें, जैसे भगवान कृष्ण की हम चर्चा करते हैं कि अष्टमी को ऐसे ऐसे अमुक जगह पैदा हुआ, फिर वो गोकुल में गए, फिर वो शिशु रूप में, फिर बाल लीलाएं, फिर बड़े हुए, फिर ऐसा हुआ, फिर प्रभास में और फिर गए। ये उनकी चर्चा है जो क्षर हैं, शुरू हुआ फिर अंत हुआ और वो हो गया। अब जिस जो अक्षर है, जिसका कभी क्षय नहीं, जिसका कभी अंत नहीं, उसका कभी आरंभ भी नहीं होता। जिसका आरंभ होगा उसका अंत होगा, जिसका आदि होगा उसी का अंत होगा। जो अनादि है, जिसकी शुरुआत ही नहीं और अंत भी नहीं, और जब उसकी हम चर्चा करेंगे तो कहां से क्या चर्चा होगी उसकी? हमारी बुद्धि ये कह सकती है कि आदि और अंत का नहीं पता तो मध्य से शुरू कर दिया, हमने जहां से भी बैठे उसकी चर्चा शुरू की, तो इसको हम कह सकते हैं कि उसकी चर्चा हमने दरमियान से शुरू की, मध्य से शुरू की, मिडवे से शुरू की। उसका शुरू और अंत हमें पता नहीं, लेकिन जो हम कर रहे हैं बात उसकी, ये मध्य में से पकड़ लिया। अब आप गंभीरता से स्वयं सोचो कि मध्य भी तब होता है जिसके अंत का पता हो, आदि का पता हो, फिर दरमियान में से पकड़ लिया। मध्य शब्द भी सापेक्ष है। ये कहना कि मध्य से चर्चा शुरू की, इसका भी अर्थ होता है कि कोई चीज है उसका शुरू हो फिर अंत हो तो उसका दरमियान आएगा। अगर कोई चीज 10 फुट है तो हम कहेंगे कि 5 फुट इधर 5 इधर, बीच में एक पॉइंट आ गया, ये मध्य है। अब जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, उसका मध्य कहां? जब ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो आप उस तत्व के थोड़ा नजदीक पहुंचे। इसका अर्थ होता है उसका आदि मध्य अंत कुछ नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं उसका अंतर, उसका बाहर, उसका मध्य, ये कुछ नहीं। तो फिर ये क्या है आदि मध्य अंत? ये आदि मध्य अंत उसमें कल्पित हैं। वेदांत में जो बार बार एक शब्द आता है कि ये सब उसमें अध्यारोपित हैं, ये सब उसमें अध्यस्त हैं, वो अधिष्ठान है इनका। अधिष्ठान में कुछ नहीं होता, ना वो परिणामी होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ज्यों का त्यों रहते हुए ही आदि मध्य अंत को दिखला देता है। आदि मध्य अंत हमारी बुद्धि की कल्पना है, हमारी सोच की एक सीमा है। हम अपना सोचने के लिए इन शब्दों का सहारा लेते, क्योंकि अगर इन शब्दों का सहारा नहीं लेंगे तो फिर हमारी बुद्धि किसी तरह से भी किसी उसके आसपास पहुंच नहीं सकती। इसीलिए बार बार वो कहते हैं कि सचमुच में बुद्धि उसको पकड़ नहीं सकती। क्यों नहीं पकड़ सकती? क्योंकि बुद्धि की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए बुद्धि उस तत्व को किसी तरह से थोड़ा बहुत जान पाए, उसके लिए ये शब्द बने, अध्यस्त, कल्पित, अधिष्ठान, अध्यारोपित, ये शब्द है। अध्यारोपित का मतलब होता है कि असल में है नहीं, लगता है कि यह है जैसे, उसका मध्य है नहीं कहीं भी, लगता है कि उसका कोई मध्य है, ऐसा महसूस होता है, लेकिन असल में वो आदि मध्य अंत रहित। क्यों? जहां भी ये खंड होंगे, ये खंड होते हैं आदि मध्य अंत, एक शब्द आता है अखंड। कई लोग कहते हैं जी हमारे यहां अखंड नाम संकीर्तन है, अखंड महामंत्र का जाप है, ऐसा बहुत से लोग करते हैं, घरों पर करवाते हैं। तो वो अखंड से उनका अभिप्राय होता है कि सुबह से शाम तक या 24 घंटे तक चलेगा, रामायण का अखंड पाठ है। इससे उनका अभिप्राय होता है कि सुबह शुरू करेंगे, अगले दिन सुबह उसी समय तक चलेगा। असल में अखंड शब्द का ये अर्थ नहीं है। ये जो हम करते हैं वो सतित है, सतित मैंने लगातार, सतित का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, हम उसे पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे आज सुबह से लेकर अगली सुबह तक। तो कंटिन्यूस होना एक अलग बात है, लेकिन यूनिफाइड होना, अखंड एक और चीज है। अखंडता से अभिप्राय यूनिफिकेशन से होता है, इंटीग्रेशन से होता है, समग्रता से होता है। आप इस बात को फिर ऐसे समझ लें, आप किसी का जाप कर रहे हैं, आप बैठे जाप करने के लिए, तो इसमें जिसका जाप कर रहे हो वो अलग है, आप अलग हो, और जप की क्रिया अलग है। इसको कहते हैं खंड, तीन खंड हैं ये, तीन टुकड़े हैं ये। जिसका जाप कर रहे हो वो अलग है, आप अलग हो, और वो जो नाम चल रहा है, जो जाप चल रहा है, जप की क्रिया, वो अलग है। तो खंड खंड हैं, तीन खंड हैं। अखंड का मतलब होता है कि जाप करने वाला, जिसका जाप है और जो जाप है, तीनों एक हो गए, बचा कोई नहीं। अखंडता एक अनुभूति, अखंडता कोई शब्द नहीं है। अखंड जाप, अखंड महामंत्र जिस दिन हो गया तो फिर बाकी क्या बच जाएगा। अखंड मंत्र चैतन्य ने ही किया था, उनके अतिरिक्त तो परिकल्पनाएं हैं। ये जो सुबह से शाम तक है, ये एक एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें थोड़ी पवित्रता बनती है, थोड़ी थकावट भी होती है, थोड़ा खाना पीना भी होता है, बीच में एक आया, उसने शुरू किया, वो उठा, उसी जगह से दूसरा शुरू हो गया। जिसको हम अखंड कहते हैं उसमें कम से कम 50 लोग भाग लेंगे अलग अलग, कोई आधा घंटा बोलेगा फिर 15 मिनट, तो अखंडता कहां रह गई। अखंड का मतलब होता है कि कोई, देखो कीर्तन करते हो तो कीर्तन में ढोलक वाला अलग है, हारमोनियम वाला अलग है, शब्द अलग हैं, जिसका गीत है, जिसके लिए गीत है वो अलग, कृष्ण अलग, गायक अलग, बजाने वाले अलग, तो ये तीन खंड हो गए अलग अलग। तो इसमें अखंड कीर्तन हो नहीं सकता, 24 घंटे आप करते रहो लेकिन वो अखंड नहीं है, वो लगातार कीर्तन तो हो सकता है, सतत कीर्तन तो हो सकता है, लेकिन उसको अखंड नहीं कह सकते। अखंड एक विशेष शब्द है, और वेदांत तो पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए तो शब्दों पर ही टिका हुआ है, अगर शब्द को ठीक से नहीं पकड़ेंगे तो ठीक जगह पर पहुंचेंगे भी नहीं। शब्दों की व्याख्या अगर गलत हो गई तो फिर हम भटक जाएंगे अपने रास्ते से। जरा सा भी, इतना सा भी शब्द के सही अर्थों से, उसके लक्ष्यार्थ से अगर हमारी नजर हटी, शब्द के अगर वाच्यार्थ पर हम रह गए, शब्द के शब्दार्थ पर अगर रह गए, शब्द के सांप्रदायिक अर्थ पर अगर हम रह गए, या शब्द के किसी उलट अर्थ पर रह गए, शब्द के अर्थ शरीर के स्तर पर भी होते हैं, मन के स्तर पर भी होते हैं, बुद्धि के स्तर पर भी होते हैं। शब्द का अर्थ आदि भौतिक भी है, आदि दैवक भी है और आध्यात्मिक भी। तो हम शब्द के विशेष अर्थ, विशेष का मतलब शब्द का अर्थ नहीं होता, असल में जिस दिन किसी शब्द का अर्थ आ गया तो फिर शब्द खत्म हो जाते। शब्द के अर्थ का मतलब होता है वस्तु। शब्द तो मैं बोलता हूं लेकिन मेरा हर शब्द किसी वस्तु की ओर इशारा करता। मैंने एक शब्द बोला पुस्तक, अब पुस्तक जो शब्द मैंने बोला उसका अर्थ है ये जो सामने ठोस चीज पड़ी हुई है जो मेरे हाथ में, और अगर पुस्तक कहने से मैं कहता हूं पुस्तक का क्या अर्थ, अगर ये पुस्तक जो सामने पड़ी है ये उठा के कोई मुझे दे दे तो अर्थ हो गया, पूरा हो गया काम। और अगर मेरे से आप पूछो कि शब्द पुस्तक का क्या अर्थ, तो मैं कहूं पुस्तक का अर्थ है किताब, किताब का अर्थ है बुक, तो ये शब्द के बदले शब्द हो गए, अर्थ नहीं। एक शब्द के बदले में शब्द, जिसे आप सिनोनिम्स कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, तो शब्द के बदले में शब्द मिलते चले जाएंगे, पदा वो जिस चीज की ओर इशारा करते हैं वो नहीं मिलेगा। इसलिए वेदांत में शब्दों का बहुत कम प्रयोग है, ना के बराबर है। ये कोई विशेष शब्द नहीं है कि तीन शब्दों में सारी दुनिया खत्म हो जाए, तत्त्वमसि क्या शब्द हुआ है, अहम् ब्रह्मोऽस्मि, उसमें भी अहम् और स्मि छोड़ दो, ब्रह्म शब्द ही काफी है। जितना जितना शब्दों में आगे बढ़ेंगे शब्द के बदले में शब्द मिलते जाएंगे, और वो पदार्थ जिसके लिए वो शब्द है वो गुम हो जाए। वो कभी नहीं मिल सकता, लेकिन बहुमत आम लोगों को तो शब्द चाहिए कि उसके आगे और मिले, उसके आगे और मिले, उसके आगे और मिले। और आम लोगों के कारण ही जो साहित्यकार हैं, जो पुस्तकें लिखने वाले हैं, वो बहुत प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। कहते हैं इसने बड़ी पुस्तकें लिखी, इस आदमी ने अपने जीवन में 700 पुस्तकें लिखी और एक एक पुस्तक 700 पृष्ठ की। उस 700 की 700 पुस्तकों में एक भी बात आपको ढंग की नहीं मिलेगी, स्वाय इसके कि उसको आप पढ़ते जाओ, देखते जाओ, रखते जाओ, लेकिन ठोस जीवन में कोई परिवर्तन हुआ हो, कहीं सत्य के नजदीक आप पहुंचे हो, यह कभी हुआ नहीं। उपनिषदों में कोई बहुत लंबी चौड़ी व्याख्याएं नहीं, क्योंकि शब्द के बदले में शब्द देना यह उपनिषद का काम नहीं। शब्द जिस ओर इशारा करते हैं हम उस ओर आगे बढ़ेंगे, हमारे ऋषियों की इच्छा है, प्रेरणा है, और उसी में ही हमारे जीवन की सार्थकता। इसलिए ज्ञान मार्ग में शब्दों का प्रयोग, ज्ञान की चरम सीमा में आप दक्षिणामूर्ति को प्रणाम करते हैं, वेदांतियों की जो संप्रदाय है। और दक्षिणामूर्ति ने जो भगवान शंकर का एक रूप है जिसको दक्षिणामूर्ति, और उसमें उन्होंने उपदेश दिया सनत 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 कुमार इनको, लेकिन उस उपदेश में कोई शब्द नहीं। जो दक्षिणामूर्ति उपदेश है वो केवल एक इशारा है जिसको तर्क मुद्रा कहते हैं, तर्जनी और अंगूठे को मिला दिया, बाकी तीन उंगलियां अलग कर दी। वो सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने ये इशारा कर दिया, वो कहने वाला कह गया, समझने वाले समझ गए। अर्थ हो गया जीव और ब्रह्म एक हैं, बाकी माया को अलग कर दो, तीनों को, सत राजतम को अलग करो, जीव और ब्रह्म एक। अब वो समझने वाले इतने से ही समझ गए, और अगर कहीं जरूरत पड़ी भी बोलने की तो इतना ही वो कह पाए, यत तत् अदृश्य। कहने वाले कह गए दो हिचकियों में राजे दिल, और सुनने वाले मुद्दतों तक गुफ्तगू करते रहे। वो तो कहना था एक हिचकी लेके ही बंद हो गए, समझ गए प्यार की किस सीमा तक पहुंचा हुआ है, और बाकी उसकी व्याख्याएं चलती रहे। जिसको अक्षर कहा था पहले, परा अपरा करते हुए, अपरा की बहुत व्याख्या हुई, परा के लिए कह दिया अक्षर अधिगम्य थे, विद्या का नाम नहीं लिया। ये कहा गया परा वो है जिसके माध्यम से अक्षर का ज्ञान होता है, जो किसका कभी क्षय नहीं, ज्ञान भी नहीं। अधिगम्यता का मतलब होता है इसमें प्रवेश होता है, ज्ञान यहां उसका अर्थ नहीं। उसका हुआ कि जिससे अक्षर में प्रवेश हो जाए वो पराविद्या। वो विद्या कौन सी है ये कुछ नहीं कहा। फिर भी एक सद्गृहस्थ संयमी और धर्म के नियमों का पालन करने वाला जिज्ञासु हैं शौनक जी, कुछ बोलने की जरूरत पड़ी उन्हें समझाने के लिए, तो कहा यत तत् अदृश्य। यत मैंने जो, तत मैंने वो, जो तत त्वमसि करके बोलते हैं वो तू ही है। जहां तत शब्द आएगा, तत का अर्थ ब्रह्म, ईश्वर। वो यत तत अदृश्य, जो वो अदृश्य, यानी जो तूने पूछा है शिष्य को कह रहे हैं। ये बाकी सब बातें अध्यारोपित, अब उसको उनका अध्याहार करना पड़ेगा। जैसे वो फिल इन द गैप होता था ना, एक कभी पढ़ाई लिखाई में एक प्रश्न आया करते थे, फिल इन द गैप, बीच में जगह छोड़ी होती थी, जो उसको ठीक भर गया उसको पूरे नंबर मिल जाते थे, नहीं भरते थे तो जीरो हो गया। अब इसका संबंध उस पहले वाक्य से है जो शौनक जी ने पूछा था, जो शौनक ने पूछा उसी के संबंध में कह रहे हैं कि यत जो तूने पूछा है, तत वो जो है अदृश्य, वो अदृश्य। अब जो अदृश्य है उसकी भी केवल परिकल्पना होगी। परिकल्पना का अर्थ यह है कि उसकी सांगोपांग व्याख्या नहीं होगी, उसका नाखशिख वर्णन नहीं होगा। जैसे हम वर्णन करते हैं ना चीजों का, बड़ी डिटेल में वर्णन करना, श्रृंगार रस में इसको नाक्षिक वर्णन कहते हैं कि श्रृंगार का सर से लेकर पांव तक वर्णन किया गया, राधा जी का, उनका, 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 ऐसे ऐसे। अब जो अदृश्य है इसका क्या वर्णन करोगे? अब अदृश्य शब्द में ही छुपा हुआ है